सार के स्वाध्याय पर। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय की पूर्व क्रिया हो चुकी है, हम मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। सिद्धम शुद्धम पणनीय जिनेन्दु वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोहणम गोच्छम। जीव और अजीव ये मुख्य रूप से दो द्रव्य माने गए हैं और इन दोनों से ही संसार और मोक्ष की व्यवस्थाएं चलती हैं। अर्थात अजीव द्रव्य के जो पांच भेद हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, तो जीव और पुद्गल के संयोग से ही संसार बना है। और जब जीव द्रव्य शुद्ध अकेला रह जाता है तो उसके साथ सारे संयोग संबंध समाप्त हो जाते हैं और वह जीव अशुद्ध बन करके शुद्धात्मा के रूप में, भगवान आत्मा के रूप में, सिद्ध परमात्मा के रूप में सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। उससे पहले संसार में जीव की अशुद्ध परिणति है, इसीलिए वह अशुद्ध जीवात्मा के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी अशुद्ध जीव की बीज प्ररूपणाओं का कथन करने के लिए आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीव कांड नाम के ग्रंथ की रचना की। इसको आप समझें षट खंडागम सिद्धांत ग्रंथ का सार समझना है आपको, क्योंकि नेमी चंद्र आचार्य देव ने उन ग्रंथों का ही सार लेकर के पुष्पदंत भूतबली आचार्य के सूत्रों का भी सार लेकर के और इस ग्रंथ की रचना की है। इसकी आप 8-9 गाथाएं पढ़ चुके हैं, यानी 20 प्ररूपणाएं। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्नाओ या ओगव्य कमसो विषम तु परवणा भणिदा। गुणस्थान जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा ये 5 हुई और 14 मार्गणा, 14, 5, 19 और 1 उपयोग, इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का कथन किया गया। उनमें से सर्वप्रथम प्ररूपणा के रूप में गुणस्थान रहा। गुणस्थान के 14 भेद बताए, वो 14 भेद अब तक आपको बिल्कुल निश्चित रूप से याद हो ही गए होंगे। तो अब आपको उन गुणस्थानों के अलग अलग लक्षणों की ओर ले चलती हूँ। तो आपने मिथ्यात्व गुणस्थान को जाना, जहां मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो पाती, अश्रद्धान रहता है, वह मिथ्यात्व गुणस्थान है। और मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती जीव को अतत्व श्रद्धान रहता है, सच्चे तत्वों पर श्रद्धान नहीं हो पाता। इनको पढ़ने का मतलब यही है कि हम अपना थर्मामीटर अपने ऊपर ही प्रयोग करके देखें कि हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। अब हम दूसरे गुण स्थान पर आए जिसका नाम है सासाधन गुण स्थान। जो सासाधन गुण स्थान सम्यक से गिरने की अपेक्षा से बनता है, मिथ्यात्व में जीव नहीं आता सम्यक से गिर करके, और उसके बीच के काल को सासाधन सम्यक कहा गया है। संक्षेप में आपको ये जानना है और बाकी तो पुस्तक पढ़ करके, और जिनको ज्यादा डिटेल में जानना है तो बड़े गोमठ सार जीव कांड को भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सादी और अनादि मिथ्या दृष्टि के दो प्रकार से, दो तरह से कर्मों के उपशम से होता है, और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को किस प्रकार से कौन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो महामुनि उपशम श्रेणी पर चढ़ करके वहां से गिरते हैं और मिथ्यात्व में आने को होते हैं, तो उनको ही सासाधन सम्यक दर्शन सासाधन सम्यक्त्व नाम का गुणस्थान होता है। तीसरे गुणस्थान में हम आए तो कल आपने जाना, इसमें वर्णित नौमी गाथा के अनुसार कि सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम ना होकर जो मिश्र रूप परिणाम होता है उसको तीसरा गुणस्थान कहते हैं। तो इसमें शंका उठना स्वाभाविक था कि दो परिणाम एक साथ कैसे हो जाएंगे, उसकी बात बताई थी कि दो परिणाम एक साथ हो सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति में किसी से शत्रु भाव, किसी का उस व्यक्ति के प्रति और किसी का उससे मित्र भाव, दोनों एक में रह सकते हैं। वह किसी का शत्रु हो सकता है, आप अपने साथ घटित कर लीजिए, आपकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपकी किसी से प्रगाढ़ मित्रता हो सकती है, तो दोनों ही भाव आपकी एक आत्मा के अंदर ही है। इसी प्रकार से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं और दोनों एक आत्मा में घटित हो सकते, इस बात को बताया। इसको थोड़ा सा गाथा के माध्यम से भी आगे में बताया है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व जो है वो एक साथ कैसे रहेंगे, इसका उदाहरण भी दिया। दही गुड़ मिव्वा मिस्सम पूभावम नेव कारिदम सक्कम एवं मिस्सय भावो सम्मा मिच्छोत्तिनाद अवो। ये बड़े जीवकांड के अंदर गाथा नंबर 22 है। इसके अंदर कहा कि जिस प्रकार दही और गुड़ उन दोनों को परस्पर में जब मिला देते हैं तो तीसरा एक स्वाद अलग बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, श्रीखंड, है ना, मध्य प्रदेश में वो चलता है ना श्रीखंड। तो दही और गुड़ को या दही और शक्कर को मिला देते हैं तो उन दोनों का पृथक पृथक यद्यपि स्वाद होता है, लेकिन मिल जाने के बाद उन दोनों के स्वाद को, उन दोनों की परिणति को अलग अलग नहीं कर सकते। और उस द्रव्य के प्रत्येक परमाणु का रस मिश्र रूप रहता है, यानी पूरा का पूरा दही उसके अंदर गुड़ मिल गया तो वो मिश्रित परिणाम रूप वो फिर कहलाता है, क्या कहलाता है वह, क्या कहलाया, श्रीखंड कहलाया। तो खट्टा और मीठा मिला हुआ उसका स्वाद रहता है। उसी प्रकार से मिश्र परिणामों में भी एक ही काल में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब क्या किया है इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये आत्मा में ऑटोमेटिक व्यवस्था है और ऊपर से इसको वर्णित करने का मतलब ये है कि अपना थर्मामीटर हम स्वयं प्रयोग करके देखें कि कहीं हमारे मिश्रित परिणाम तो नहीं है, कहीं हम मिथ्यात्व रूप से तो नहीं है, या हम सम्यक्त्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें और 23वीं नंबर की गाथा के अंदर आगे बताया है, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा जो गोमट सार जीवकांड सार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी डिटेल में ले चल के आपको बताती हूँ कि तृतीय गुण स्थान में और क्या विशेषता रहती है। सो संजमम न गिण्हति देशजमम वाण वंददे आऊ सम्मम वामिच्छम वा परिवज्य मरदि नियमेण। इन कुछ चीजों को आप नोट कर लिया करिए कि तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव सकल संयम या देश संयम को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो मिश्रित परिणाम है, वहां न मिथ्यात् रूप है, तो मिथ्यात् रूप होते तो पहले गुण स्थान में चले जाते, सम्यक्त रूप होते तो चतुर्थ गुण स्थान या पंचम में आ जाते, तो वहां न देश संयम को ग्रहण कर सकता और न सकल संयम को। दूसरी बात यह है कि इस गुण स्थान में देश अजमम वा न बंध दे आऊ, इस तृतीय गुण स्थान में आयु कर्म का बंध भी नहीं होता। आयु कर्म का बंध पहले गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, इनमें होता है, लेकिन तृतीय गुण स्थान में बंध नहीं होता आयु का। और एक अलग और बात है, सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्य मरदि नियमेण। इस गुण स्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियम से या तो सम्यक्त रूप परिणामों के द्वारा या मिथ्यात् रूप परिणामों के द्वारा, ये बात कही गई है। कहीं कहीं आचार्यों की मतों से इसमें भिन्नता भी है, लेकिन इस गोमट सार जीवकांड के अंदर बताया है कि यदि इस गुणिस्थान वाला जीव मरण करेगा, मतलब कि या तो फिर वो मिथ्यात् में चला जाएगा और या फिर वो सम्यक्त रूप परिणाम है तो फिर वो सम्यक्त यानी चतुर्थ गुण स्थान में चला जाएगा। इसलिए ये विशेषता आप माने और इस गुण स्थान में रहते हुए यानी तृतीय गुण स्थान में वह मरण नहीं कर सकता, ऐसा नियम बताया है, तो इस बात को भी आप नोट कीजिएगा। और आगे और भी बताया कि तृतीय गुण स्थान वर्ती जीव ने तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले, एक गाथा इसमें है कि सम्मत मिच्च परिणामेषु जहिम आवगम पुराबद्धम। ये एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता रही हूं। तहि मरणम मरणंत समुघादो वीर्ण मिस्सम्मी, यानी मिश्र गुण स्थान के अंदर तृतीय गुण स्थान को प्राप्त करने से पहले कोई किसी जीव ने सम्यक या मिथ्याक्त रूप परिणामों में से जिस जाति के परिणाम काल में आयु कर्म का बंध किया, उसी तरह के परिणामों के होने पर उसका मरण होता है। तो उसी जाति के परिणाम होने पर मरण होगा, तो मतलब गुण स्थान बदल जाएगा, किंतु मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होगा, न ही इस गुण स्थान में मारणांतिक समुद्धात होता है। तहि मरणम मरणंत समुघादो वीर्ण मिस्सम्मी, यानी मिश्र गुण स्थान में मारणांतिक समुद्धात भी नहीं होता। अब आप कहेंगे समुद्धात किसे कहते हैं, ये कौन सी नई बात आ गई है? तो समुद्धात को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि समुद्धात का लक्षण क्या है। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, उन्होंने गाथा में भी कहा असमोहदो व्यवहारा, तो कि जीव अपने शरीर प्रमाण रहता है कब तक, जब तक वो समुद्धात नहीं करता। समुद्धात की अवस्था में आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को न छोड़ करके और बाहर निकलते हैं, इसका नाम है समुद्धात। तो समुद्धात का लक्षण इसमें कहा गया कि मूल शरीर मछंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो हवदी समुद्धादयम नाम, अर्थात मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्धात कहते हैं। ये किन्हीं किन्हीं जीवों के होते हैं, समुद्धात सबके साथ नहीं होते हैं, सबके शरीर के अंदर नहीं घटित होता, सबकी आत्मा के प्रदेश नहीं बाहर निकलते, लेकिन समुद्धात नाम की चीज है तो वह इसमें बताएंगे। अब इस समुद्धात के सात भेद होते हैं, कौन कौन से उनको भी नोट कर लेना आप, कि वेयण कसाई वे उव्यो मारणंतियो समुघादो तेजाहारु छट्टो सत्तमो केवलीनम तु। सात समुद्धात होते हैं, वेदना समुद्धात, कषाय समुद्धात, विक्रिया समुद्धात, मारणांतिक समुद्धात, तेजस समुद्धात, आहारतम समुद्धात और केवली समुद्धात। ये सात समुद्धात होते हैं और ये समुद्धात जिनके भी होते हैं तो मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीर के साथ आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, पुनः अंदर आ जाते हैं। एक मारणांतिक समुद्धात ऐसा है कि मारणांतिक समुद्धात, जैसे इसमें कहा कि तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्धात भी नहीं होता है, तो उसमें क्या है कि जिस जीव ने पूर्व से ही किसी आयु का बंद कर रखा है, समझो किसी मनुष्य ने नरक आयु का बंद कर लिया, या किसी जीव ने देव आयु का, तिरंच आयु का, जिसका भी बंद कर लिया, तो उसमें तो उसका जाना निश्चित है। तो मरण से कुछ क्षण पहले उस शरीर का जहां उसको जाना है उस स्थान का वो स्पर्श करता है और स्पर्श करके आ करके पुनः अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता, उसके बाद मरण हो जाता है और वो वही पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्धात। जो तो जब तृतीय गुण स्थान में मरण ही नहीं रहा तो मारणांतिक समुद्धात का भी उसमें निषेध किया गया है। आप इन चीजों को जानना और समुद्धात की विशेष व्यवस्था को प्रकरण आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, और अन्यथा आप द्रव्य संग्रह की टीका से और गोमटसार जीवकांड की टीका आदि से इसको विशेष रूप से जानना। ये तीसरे गुण स्थान में होने वाले कुछ विशेषताओं को मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया, जिसका वर्णन गाथा के माध्यम से कल आप जान चुके हैं कि ये मिश्र गुण स्थान कहलाता है, जहाँ सम्यक और मिथ्यात् रूप दोनों प्रकार के मिश्रमयी परिणाम होते हैं। अब हम चलते हैं चतुर्थ गुण स्थान की ओर। अब आप आइएगा गाथा नंबर 10, पुस्तकें संभवतः आप लोगों को मिल चुकी होंगी, जिनको नहीं मिली हो शीघ्र हस्तिनापुर से संपर्क करके और उन पुस्तकों को, इसी पुस्तक को मंगा लें, गोमठ सार जीवकान सार इसका नाम है और इसमें 173 गाथाएं हैं, 734 गाथाओं के सार रूप पूज्य माता ने कलेक्शन करके कि आपके लिए मूल मूल स्वाध्याय करने में मूल गाथाओं को संक्षेप में कलेक्शन करके इसको दिया है। इसका नाम इसीलिए रखा गया है गोमठ सार जीवकान सार। इसका आप स्वाध्याय कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके तो हमारे यहाँ से दीदी आपको फोटो करके पीडीएफ बना करके भेज ही रही हैं, भेज रहे ना, एक एक गाथा का रोजाना भेज। एक अध्याय पूरा जा चुका है, आप सब स्वाध्याय करें क्योंकि हम लोग अयोध्या तीर्थ पर यहाँ पर अभी रह रहे हैं और पुस्तकों का सारा केंद्र जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में है, वहां से आप कोई भी पुस्तक मंगा सकते हैं। अब आप गाथा नंबर 10 देखिए, क्योंकि प्रथम अध्याय का पीडीएफ बताया गया आपके पास पहुंच गया 26 गाथाओं का, तो आराम से आप पढ़िए। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है या नए स्वाध्यायी हैं, उन सब को भी संपर्क करके व्हाट्सएप से मंगा लेना चाहिए। आप फोन मत किया करिए क्योंकि सब लोग व्यस्त रहते हैं, केवल व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजे, आपका मैसेज पूरा जम्बूद्वीप के लिए कन्वे होगा और वहां से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। चतुर्थ गुण स्थान इसका नाम क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि, इस गुण स्थान का लक्षण। सम्मत देश गादे सुदयादो वेदगम हवे सम्मम,
सुदयादो वेदगम हवे सम्मम,
चलमलिन मगाडम तम निचम कम्मखवण हेदु, एक साथ सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। सम्मत देश गादे सुदयादो वेदगम हवे सम्मम, चलमलिन मगाडं तम निचम कम्मखवण हेदु। अब इस गुणस्थान का लक्षण आपने प्राकृत की गाथा में पढ़ा, संस्कृत छाया है इसकी। सम्यक्त देश गाते हृदयात वेदकम भवेत सम्यक्तम, चलम मलिन मगाणम तन्नित्यम कर्म क्षपण हेतु। अर्थात सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों में से देश घाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर तथा अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वघाती प्रकृतियों के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान निषेकों की बिना फल दिए ही निर्जरा होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। वे परिणाम चल मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अर्थात जगन अंतर मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट छाछट सागर पर्यंत कर्मों की निर्जरा के कारण हैं। ये सैद्धांतिक भाषा आपने सुन ली। अब इस गुणस्थान का चूंकि नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, यानी यहाँ जीव व्रतों को नहीं धारण करता लेकिन सम्यक दर्शन उसको हो जाता है, तब वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाला प्राणी कहा जाता है। यह देवताओं के भी हो सकता है, मनुष्यों के होता है, तिर्यंचों के भी होता है ये चतुर्थ गुणस्थान, और नारकियों के भी होता है, यानी जो मिथ्यात्व से सम्यक की ओर आते हैं उन सब के ये चतुर्थ गुणस्थान होता है। अब इसकी परिभाषा में क्या है, ये तो सामान्य हो गया कि व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है। अब इसमें क्या है बताया कि सम्यक दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियां, कौन सी प्रकृतियां हैं सम्यक दर्शन को विपरीत करने वाली, विपरीत करने वाली मतलब मिथ्यात्व में ले जाने वाली, यानी आत्मा के सर्व गुणों का घात करने वाली जो प्रकृति है, उन प्रकृतियों में से देशघाती जो सम्यक्त प्रकृति है, देखो क्या है, सात प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, जो अनंत अनंत भावों का बंधन कराने वाली हैं। ऐसी चार अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियां, पुनः मिथ्यात्व के तीन टुकड़े किए जाते हैं और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये उसके तीन भेद हो जाते हैं। तो चार अनंतानुबंधी और तीन दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां कही जाती है सात। इन सात प्रकृतियों में से जो सम्यक प्रकृति है वो देशघाती है। देशघाती मतलब चारित्र को तो, देश संयम को तो नहीं होने देती, और सम्यक दर्शन जो होता है उसके अंदर भी थोड़ी मलिनता आती है, समझे ना। इसका नाम सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये मिथ्यात्व से टूट करके, जो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए तो उसमें से एक सम्यक प्रकृति नाम की ये प्रकृति है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक प्रकृति में सबसे पहले आपको अंतर जानना है, समझे ना। तो उस सम्यक प्रकृति के जो देश घाती है उसके उदय होने पर, और क्या है, इसका तो उदय हुआ, और अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन छह प्रकृतियों की जो कि सर्वघाती हैं, इन प्रकृतियों के निषेक झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम रहता है, ये शांत पड़ी रहती है। उस समय अनंतानुबंधी की चारों में से किसी का उदय नहीं रहता, अपना सत्ता में पड़ी हुई है, इसलिए उनका सदवस्था सत्ता में विद्यमान रूप उपशम कार्य नहीं कर रहे, इसलिए उपशम है, और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो इन छह प्रकृतियों के सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान के निषेकों की जो बिना फल दिए, यानी इतने सुंदर जब ये परिणाम होते हैं, तो वर्तमान के निषेक बिना फल दिए निर्जीर्ण होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में जो आत्मा के परिणाम होते हैं, उस समय उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन को वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं या क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, समझ गए। ऐसे सम्यक दर्शन से भी आप कहें सम्यक प्रकृति के उदय से उसके अंदर दोष लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा कि इससे निच्चम कम्मक खवण हेदु, जितनी देर तक, जितने दिन तक ये सम्यक दर्शन रहता है उतने दिन तक कर्म का क्षपण नित्य ही होता रहता है। तो कैसे जघन्य से अंतर मुहूर्त है क्षयोपशम सम्यक दर्शन का काल, और उत्कृष्ट से 66 सागर पर्यंत ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन रह सकता है, बहुत बड़ा काल है, और निरंतर जब तक ये सम्यक दर्शन रहेगा तब तक नित्य ही कर्मों का क्षपण होता रहेगा। और जो कुछ इसमें थोड़ा सम्यक प्रकृति के उदय के कारण दोष लगते हैं उनके बारे में भी मैं कल आपको विशेष प्रकार डालूंगी। इस प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान तक हम पहुंच गए हैं। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि हमें मिथ्यात्व से आगे चल करके, और हम आज सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा करते हुए और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, आज पंचम काल में सभी मनुष्यों, सभी मनुष्य जो भी सम्यक दृष्टि है वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, ये आज के स्वाध्याय का सार समझना।